आज हमारी भट्टी का दूसरा दिवस। आप सभी बहुत भट्टी का आनंद ले रहे होंगे और आज के इस दिवस के हमारी जो अंतिम क्लास है उसके लिए हमारे बीच में आए हैं भ्राता राजू भाई जी। हम सभी आप सभी आपका यहाँ स्वागत करते हैं। आप सबको रोज इतना खजाना मिलता है, जब भी कोई भी स्पेशल दिन आता है या अन्य कोई भट्टियों आदि के प्रोग्राम्स होते हैं तो हमेशा मधुबन से हमारे पास इतना सारा ज्ञान खजाना आता है, उसका श्रेय जाता है राजू भाई को। राजू भाई अच्छे अच्छे बाबा के रत्नों को कलेक्ट करके कुछ ना कुछ उसको रूप देके हमारे तक पहुंचाते रहते हैं। हम रोज बाबा की मुरली में वरदान सुनते हैं, धारणा का सार सुनते हैं, स्लोगन हम पढ़ते हैं, सारी मुरली चंद शब्दों में हमें याद रह जाती है। तो आप रत्नों की खान है, क्योंकि मुरली वैसे भी आप देखिए अव्यक्त बाप दादा जब मुरली चलाते हैं तो साइमल्टेनियसली आप वो मुरली जो है साथ साथ कंप्यूटर पे लिखते रहते हैं और वही मुरली रात तक सभी सेंटरों पर पहुंच भी जाती है। तो ऐसे हमारे भ्राता जिनके पास ढेर सारे खजाने हैं तो आज आपके साथ इस विषय पर शेयर करेंगे कि साधनों को यूज करते हुए, क्योंकि वैसे भी साधन तो बहुत है, यहां भी हम देखते हैं बहुत से साधन हैं, लेकिन उन साधनों को यूज करते हुए हम साधना का बैलेंस, उन दोनों का बैलेंस कैसे मेंटेन करें, इस पर वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे आप ग्राम विकास प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं, ग्राम विकास की भी सेवाएं समय प्रति समय स्थान स्थान पर जाकर करते ही रहते हैं, भट्टी कराने भी अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी आज के विषय को हमारे सामने स्पष्ट करें आदरणीय भ्राता राजू भाई जी।
ओम शांति। बाबा के बहुत बहुत स्नेही जिनको बाबा ने अपने सिर पर बिठाया है, ऐसी मीठी मीठी माताओं का संगठन और विशेष साधना भट्टी के लिए इतनी सब माताएं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं जिनको देखकर बाबा भी वतन में कितना खुश हो रहा होगा, कितनी लगन से तपस्या करने के लिए आप सब अपनी अपनी सेवाओं को घर को छोड़कर के मधुबन में पहुंच गए हैं। और बड़ा अच्छा प्रकृति का भी सहयोग मिल रहा है, जो बहुत गर्मी थी अभी मौसम भी आपको साथ दे रहा है। मैं समझता हूँ आज का सारा दिन बहुत अच्छी तपस्या और क्लासेज की होंगी। रात्रि क्लास में वैसे चिट चैट करते थे हम सभी पहले पहले, चिट चैट माना कोई न कोई अच्छी रूह रिहान। आप सभी जानते हो मधुबन जब बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद दीदी और दादी ने मधुबन के घर को बहुत प्यार से संभाला और सबकी पालना की। दीदी दादी की जोड़ी की कहानियां आप सबने सुनी होंगी, सुनी है सबने? जिन माताओं ने दीदी और दादी की कहानियां सुनी हैं वो हाथ उठाओ। बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, नई नई बहुत हैं। तो दादी तो कुमारी थी, दीदी शादी की हुई थी, लेकिन दीदी और दादी की जोड़ी यज्ञ के अंदर बहुत कुछ कमाल करके गई और हम सबको सादा जीवन, उच्च विचार, कम खर्च वाला नसीन करके दिखाया और सिखाया। बहुत कम साधन थे, सुना होगा आप सबने, मधुबन बहुत छोटा सा घर था और हम सभी केवल 50-60 भाई बहने उस समय मधुबन में थे। 71 की बात मैं सुना रहा हूं। साधन कोई भी नहीं। आज तो हमारी विज्ञान की प्रगति के साधन जो भी हमारे पास उपलब्ध हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, वीडियो हो रही है, लोग लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन वो जमाना था जो हम सब केवल 50-60 लोग ही मुरली सुनते, क्लास करते और आपस में ही रूह रिहान करते थे। ये सब साधन साइंस के बाद में आए हैं। कुछ दिन पहले एक बाबा की मुरली सुनी होगी कि बच्चे साकार बाबा की मुरली में था, मैं 500 बच्चों को सामने कैसे पढ़ाऊं? अगर बच्चे मेरे सामने आ जाएं तो मैं उनको कैसे पढ़ाऊं? और आज कितनी सभा है? आज तो बाबा के सामने 25,000, 30,000, 35,000 की सभा उनको बाबा पढ़ाता है। और वो समय था जो बाबा कहते थे 500 को मैं कैसे पढ़ाऊं, क्योंकि बाबा अपने सामने माइक नहीं रखने देते थे। बच्चे माइक में कोई पढ़ाई थोड़ी होती है। अब ये साइंस का साधन अगर नहीं होता तो इतने सब दूर दूर बैठे हुए हमारी आवाज को कैसे सुन सकते हैं, या बाबा की अव्यक्त आवाज को कैसे कैच कर सकते हैं? तो साधन तो साइंस ने बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं, लेकिन कई बार हम सभी साधनों को यूज करते करते साधना को भूल जाते हैं। और बाबा कई बार कहते हैं कि जो आदि में था और वही अंत में होगा। माना ये साधन जो बीच में हमें मिले हैं, साइंस ने सुख दिए हैं, ये सब साधन अंत में नहीं मिल पाएंगे। साधना से यज्ञ का प्रारंभ हुआ और साधना से ही यज्ञ की समाप्ति होगी। बीच में साधन सेवा के लिए बड़े अच्छे अच्छे आए हैं और उन साधनों का लाभ हम सब बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए ले रहे हैं। साधना के लिए साधन जरूरी हैं, लेकिन कई आत्माएं साधनों के वश हो जाती हैं, अधीन हो जाती हैं। इसलिए बाबा को कहना पड़ता है, बच्चे इसका बैलेंस रखो। साधना के लिए मूल कौन कौन से साधन चाहिए? अभी हम आपसे इतनी सभा में पूछ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपके आगे रख रहा हूं सूक्ष्म साधन। पहले कोई अच्छी साधना के लिए पहले स्वस्थ शरीर चाहिए। अगर शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, कोई प्रकार का दर्द है, बीमारी है, ब्रेन ठीक वर्क नहीं कर रहा है, तो हम साधना में बैठेंगे और वो शरीर अपनी तरफ खींचता रहेगा। इसलिए साधना के लिए पहले स्वस्थ शरीर की जरूरत है और स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है अच्छी तरह से ठीक तरह से सुव्यवस्थित ढंग से टीवी का जमाना है ना तो सब देख रहे हैं कुछ लगा हुआ तो स्वस्थ शरीर के लिए दो बातें गीता में कही गई हैं योगी के लिए कौन सी दो बातें संतुलित आहार और संतुलित नींद अगर आपको नींद करने का समय नहीं मिलता या अधिक नींद करने की आदत है दोनों चीजें साधना में नुकसान पहुंचाती हैं। नींद नहीं किया दिन रेस्ट नहीं मिली शरीर को और योग करने साधना के लिए आप बैठेंगे तपस्या के लिए तो आपको नींद की लहरें आना शुरू हो जाएंगी आंख बंद हो जाएगी और कोई आलसी है बार बार उसको नींद करने की आदत है तो भी वो योग में साधना में बैठ नहीं सकता। इसलिए अगर उसका आहार संतुलित है ना अधिक भोजन न कम भोजन और संतुलित आहार के साथ साथ जरूरी है सात्विक आहार जो योग युक्त हाथों का बनाया हुआ हो और बिल्कुल ही कोई भी प्रकार का तामसिक और राजसिक भोजन न हो सात्विक हो। उत्तेजित करने वाले अगर पदार्थ कोई खाता है तो उसकी इंद्रियों में शीतलता सरलता नहीं आती उत्तेजनाएं अंदर से आती हैं और वो साधना नहीं कर सकता। इसलिए साधक के लिए आवश्यक बताया गया है आहार बहुत कम से कम हो और बहुत सात्विक हो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जैसे भोजन और नींद की जरूरत है ऐसे व्यायाम और एक्सरसाइज की भी जरूरत होती है। अगर शरीर स्वस्थ है तो बहुत अच्छी तरह से आप तपस्या कर सकते हैं साधना कर सकते हैं। तो पहले अपने इस साधन को चेक करो। इसके ऊपर बाबा हमें कहता है कि इसमें मोह नहीं रखो। ये अंतिम जन्म का अंतिम शरीर है बीमारियां आएंगी लेकिन आप उन बीमारियों से घबराओ नहीं ठीक तरह से इसकी संभाल करो डरो मत। इसलिए शरीर स्वस्थ रहेगा तो योग बड़ा अच्छा लगेगा। ध्यान रखो अपनी लौकिक दिनचर्या के बीच में। मधुबन में तो आपको बड़ी अच्छी दिनचर्या मिली है लेकिन अपने पारिवारिक जीवन में घर गृहस्थ के बीच में रहते हुए हर कार्य व्यवहार में आते हुए एक बहुत संतुलित जीवन हो। न टू मच में जाओ न टू मच खान पान में जाओ न टू मच नींद में न कोई टू मच फैशन में। अगर इस पर आप ध्यान रखेंगे तो ये शरीर आपको समय पर साथ देगा क्योंकि इससे बहुत कमाई करनी है। ये बहुत वैल्यूबल संगम का शरीर है। भगवान से इसे मिलन मनाना है भगवान के रतन चुगने हैं भगवान के कार्य में इस शरीर से मददगार बनना है। सतयुग की स्थापना में इसका बड़ा योगदान है। इसलिए बहुत कीमती शरीर मिला है इसकी संभाल करो लेकिन इसमें मोह ममता नहीं रखना। ठीक है मोह ममता होगी तो इसी को सजाते रहेंगे भूल जाएगा योग। इसलिए बहुत बैलेंस इसका भी चाहिए। दूसरा साधकों के लिए साधन है सबसे अच्छा क्या चाहिए मन चाहिए। मन अगर चंचल है मन अगर दूषित है मन के अंदर अगर बहुत व्यर्थ और नेगेटिविटी है मन किसी पर विशेष आकर्षित है, प्रभावित है, कहीं न कहीं लगाव है, झुकाव है, किसी में भी अटैचमेंट है, तो ये मन साधना करने नहीं देगा। साधकों के लिए बहुत अच्छा साधन है मन। अगर ठीक है किसी का तो मन मनाभव होना बड़ा इजी है, नहीं तो आप इसको समझाने का प्रयास करेंगे और ये आपको यहां बैठे भी धक्का खिलाएगा अपने, जहां पर आपकी अटैचमेंट होगी वहां पर, बच्चों में होगी, पति में होगी, साधनों में होगी, घर में होगी, वैभव में, कहीं पर भी होगी, तो मन आपको एक जगह बैठने नहीं देगा, साधना करने नहीं देगा। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं मन को अच्छे से अच्छा भोजन खिलाओ, ऐसा वैसा भोजन खिलाओगे तो ये कहना नहीं मानेगा। आजकल इस मन को कौन सा भोजन दे रहे हैं लोग, बाबा के बच्चे तो नहीं देते होंगे, बहुत दूषित भोजन इसको मिल रहा है, और वो दूषित भोजन माया ने ऐसा साधन निकाला है जो घर घर तक पहुंच गया है, टीवी, समझ गए। बाबा कहता है ये टीबी की बीमारी है, टीबी नहीं है। और अगर मन उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित है, बहुत इंटरेस्ट है उसको देखने के प्रति, तो साधना नहीं कर पाओगे। साधक को कुछ बातों की परहेज जरूरी है, साधन है, किस लिए है, टीवी का साधन आज घर घर तक बाबा का संदेश पहुंचाने का बहुत अच्छा साधन है। टीवी के द्वारा जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, यहां पर कितनी माताएं बैठी हैं, देखो बहुत सी माताएं हैं जिन्होंने टीवी को, आस्था चैनल को देख करके ज्ञान लिया होगा। अभी पीस ऑफ माइंड चैनल है, उसमें सारा दिन ज्ञान के गीत, ज्ञान के लेक्चर्स, क्लासेस, मुरली सब कुछ मिलता रहता है। तो ये साधन जरूर अच्छा है साइंस का, लेकिन इसके अंदर जो क्या रहा है आप सब जानते हो, जो आजकल सीरियल्स आती हैं, सिनेमा की दूसरी रूपरेखा जिसको बाबा कहता पाप की मां, बहुत देखने का अगर इंटरेस्ट बढ़ गया, न्यूज के कारण चैनल खोला, कोई अच्छी चीज सुनने के लिए चैनल खोला, और ऐसे ऐसे दृश्य अगर देखने का इंटरेस्ट आ गया तो रात बीत जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, और अमृत वेला मिस हो जाएगा। तो साधकों के लिए क्या जरूरी है, बाबा एक महामंत्र देता है कि ऐसी चीजों को मत देखो, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, ये सब इविल है, और ये कलयुग के अंदर सबसे बड़ी माया है। साधन अच्छा है लेकिन अगर आपने परहेज नहीं रखी, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, तो आपको साधना करने नहीं देगा। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं बच्चे मन को बड़ा अच्छा बना लो, मन को बहुत अच्छे अच्छे विचार देना सीखो, कभी भी कोई बात मन में ऐसी न रखो, किसी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई तो उसका प्रभाव पड़ जाए, और किसी के प्रति कोई बात नहीं अच्छी लगी तो उसे घृणा हो जाए। अगर ये मन किसी के घृणा के प्रभाव में आ जाता है, किसी के प्रभाव में, विशेषताओं के प्रभाव में आ जाता है, तो साधना करने नहीं देगा। इसलिए मन बहुत अच्छा साधन है, इससे हम यात्रा कर सकते हैं। मन आपके पास, सबके पास अगर अच्छा है और कहना मानता है, बच्चा अगर आपका कहना मानता है तो खुशी होती है। ये मन अगर आपका कहना मानता है और आप कहो हे मन तू अभी अभी साकार वतन से मुझे अव्यक्त वतन में ले चल, अभी अभी मूल वतन में ले चल, पहुंचेगा या नहीं, इतना आज्ञाकारी, इतना सपूत है, लेकिन वो तभी होगा जब इसको अच्छा अच्छा भोजन देंगे, माना ज्ञान का चिंतन करेंगे, उसमें रमण करेंगे, बाबा की मुरलियों पर विचार सागर मंथन करेंगे, तो ये अच्छा भोजन मन को मिलता जाएगा। और अगर मन को अच्छा भोजन मिल रहा है तो मन मनाभाव सहज हो सकता है, नहीं तो बहुत भटकाता है, परेशान करता है, साधना करने नहीं देता। तीसरा, धन भी जरूरी है। कलयुग के अंदर धन का बड़ा महत्व है, लेकिन स्थूल धन के पीछे लोग भाग रहे हैं जो विनाशी है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं साधन सब विनाशी हैं और साधना एक अविनाशी है। साधना के लिए चाहिए ज्ञान का धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, और जिसके पास ये धन है वो धन तो उसके पीछे पीछे आता ही है, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्ञान को हमेशा धन के रूप में यूज करो, शक्तियों के रूप में यूज करो, क्योंकि बाबा ने हम सबको ज्ञान रत्न दिए हैं, इनको रत्नों से तुलना की है। एक एक रत्न के लिए बाबा की मुरली में आता है, एक एक मेरा रत्न लाखों करोड़ों रुपए का है वैल्यू इतनी। अगर बाबा की मुरली को कोई बहुत प्यार से सुनता समझता है तो एक एक महावाक्य रत्नागर बना देता है, माला माल बना देता है, उस धन की कोई परवाह करने की जरूरत नहीं। बाबा के घर में देखो, वो भी दिन थे, चलो 3 मिनट के लिए योग कर लें फिर बताएंगे। जब बाबा का यज्ञ कराची से माउंट आबू आया 1950 में, तो 2 साल बेगरी पार्ट चला और उस बेगरी पार्ट के अंदर बहुत परीक्षाएं आई। बिल्कुल धन नहीं था यज्ञ के पास, कोई भी प्रकार की कमाई, कोई भी आवत, कहीं से भी पैसे का आना जाना नहीं था। यहाँ तक भी दोपहर को क्या खाएंगे, भंडारी के पास न आटा न दाल न चावल न सब्जी, और 350-400 लोग खाने वाले, कोई साधन नहीं, कोई प्रकार का धन आने का साधन नहीं। फिर भी बाबा एकदम निश्चिंत, बच्चों ने सोचा जा करके कुछ कमाई करके आए, तो बाबा को बड़ा आश्चर्य लगा कि बच्चे स्थूल धन के पीछे तुम माया की नगरी में जाओगे, बाबा की छुट्टी नहीं है, तुमको बाबा ने इतना धन दिया है, जिसको बाबा ने कहा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ब्रह्मा कुमारीज। स्थूल धन के लिए नहीं कहा था, लेकिन ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन जो हम सबके पास है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। चरित्र का सबसे बड़ा धन है। तो बाबा ने अपनी महनों माताओं को विशेष संबोधित किया कि तुम पैसे के कारण दुनिया के मुंह में दरवाजे पर नहीं जाना, तुम्हारे पास जो मैंने ज्ञान रतन दिए हैं जाओ बांटो। तो 2 साल के बाद 52 से जो सेवाएं शुरू हुई उसका प्रतिफल आप सब यहां बैठे हो। ज्ञान धन का इतना बड़ा संगठन तैयार हुआ है और उसके पीछे इतना सब धन अपने आप आ गया। कोई से मांगा जाता है क्या? बाबा कोई से मांगता नहीं, कहता मांगने से मरना भला। बच्चे हैं मेरे, बच्चों से मांगा नहीं जाता, अपने आप बच्चे जानते हैं कहां पर क्या करना चाहिए, कैसे अपना भाग्य बनाना चाहिए। तो ज्ञान धन हरेक के पास फुल भरपूर होना चाहिए। है सबके पास? है माताओं के पास सबके पास है कि खाली है? सबके पास है? कभी कभी कोई कोई ऐसे उठाते हैं, कोई कोई ऐसे उठाते हैं। अच्छा, इतना बाबा ने धन दिया है ज्ञान का, बांटो। गुणों का धन है, बांटो। वाणी द्वारा ज्ञान का दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो, और अच्छी मनसा द्वारा शक्तियों का दान दो, ठीक है? तो आपके पीछे वो धन अपने आप आ जाएगा। और धन है तो साधन सब है ही, और साधन है तो उसमें साधना अपने आप है। लेकिन साधनों के पीछे धन आ गया तो हमारा, क्योंकि आजकल जितने लोग धनवान हैं उतने लोग बाबा कहता है पाप ज्यादा करते, तो वो धन अगर सही कार्य में नहीं लग रहा है, गलत कार्यों में लग रहा है, तो उससे पाप हो रहे हैं। इसलिए बाबा ने धन को भी कैसे सफल करना चाहिए वो भी सिखाया है। ऐसा नहीं हमारे पास धन है और मार्केट में हम गए तो आजकल साधनों की भरमार है। किसी एक मॉल में पहुंच जाओ तो दुनिया की हर चीज वहां पर उपलब्ध है, और अगर पैसा की आपके पास कुछ पोटली है लेके गए हैं तो जब तक वो खाली नहीं हो जाएगी तब तक आप वापस नहीं आएंगे। माया की नगरी में बाबा कहता है कि वो भी एक नए प्रकार का उसने स्वर्ग बना दिया है। तो हैं साधन हैं, लेकिन जितने आवश्यक हैं उतने ही हमारे पास होने चाहिए। ऐसे नहीं ये भी चीज अच्छी है, ये भी चीज अच्छी है, ये भी चीज अच्छी है, और सब गए और खरीद करके ले आए तो कईयों का घर क्या हो जाता है, वो घर नहीं लगता, गोदाम लगता है। कभी कभी हम किसी किसी के प्रवृत्ति वालों के पास गए हैं, जाते हैं तो कहते हैं ये घर है या गोदाम है। जो चीज मार्केट में अच्छी लगी वो घर में आनी चाहिए क्या? साधन तो दुनिया के अंदर बहुत हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे उन साधनों के पीछे तुम नहीं भागो, तुमको जो जितनी चीजें आवश्यक हैं, जो काम में आने वाली हैं, हमारी दादी कहती हैं, जानकी दादी, कि अगर कोई चीज तुम 6 मास तक यूज नहीं करते हो तो वो दान कर दो, वो यूज नहीं हो रही है तो अपने पास क्यों रखा है। और यहाँ पर कई माताओं की खास करके आदत होती है कि मार्केट के अंदर अगर चली गई तो जो चीज अच्छी लगेगी, चाहे जितनी महंगी हो, आवश्यक हो या न हो, अच्छी लग गई है मुझे चाहिए, और उसके पीछे पैसा व्यर्थ जा रहा है। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे कम खर्च बाला नसीन, खर्चा कम से कम करो और काम अच्छे से अच्छा हो। इसलिए जितनी जो चीज जरूरी है वो अवश्य रखो घर में, लेकिन घर को गोदाम नहीं बनाना, ठीक है। साधन है लेकिन वो साधना के लिए कहीं विघ्न न पड़ जाए, क्योंकि कई बार साधनों के विस्तार के वृक्ष में साधना का बीज छिप जाता है। इसलिए साधन जो जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं, जो आप समझते हो ये हमारे परिवार के लिए, घर के लिए, अपने लिए जरूरी है, उनको जरूर यूज करो, लो यहीं आपके लिए। बाबा कहते हैं ये साधन आप कर्म और योगी बच्चों के लिए प्रयोग के लिए ही सब बने हुए हैं, लेकिन अगर वो प्रयोग में आपके नहीं आ रहे हैं और आपके शौक मौज के लिए हैं, सेवा में नहीं लग रहे हैं, तो वो साधन आपको सर्प की तरह परेशान करेंगे। इसलिए कभी भी उन साधनों के चक्कर में फंस नहीं जाना। अनासक्त वृत्तियां अगर होंगी तो जितनी आवश्यकताएं हैं उतनी ही अपने पास रखेंगे, अधिक नहीं, नहीं तो साधना में बहुत बड़ी रुकावट डालेगा। इसलिए बैलेंस की यहां जरूरत है। और चौथी बात एक और मैं आपको बताऊं, उसमें बहुत स्वभाव की सरलता चाहिए। अगर आपका स्वभाव चिड़चिड़ा है, छोटी छोटी बात में आपको गुस्सा आता है, आपको जोश आ जाता है, आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं परिवार में, बच्चों के आगे, पति के आगे, किसी भी संबंधी के आगे, तो गलत शब्द आपके साधना में बहुत बड़ी रुकावट डालते हैं। इसलिए शब्दों का प्रयोग बहुत गिना चुना और संतुलित हो। ध्यान रखना हमारी मीठी मीठी माताएं, सबसे बड़ी साधना मौन की साधना है। जो मन और मुख का मौन रखना जानता है, जो बाई मुक्ता में कम से कम आता है, वही साधक कहला सकता है, वही सच्ची साधना कर सकता है। अधिक बोलने वाले का योग नहीं लगता, कुछ न कुछ वो व्यर्थ बोलता ही है, किसी की दिल को दर्द पहुंचाता ही है। और अगर किसी ने बोल से किसी के दिल में दर्द पैदा किया, दुख किसी को दे दिया बोल करके, किसी को अपसेट कर दिया, और जब वो योग में बैठेगा तो वही याद आएगा कि मेरे मुख से ऐसे शब्द निकल गए और वो व्यक्ति दुखी हो गया। इसलिए साधना करने के लिए आवश्यक है कम से कम बोला जाए। उलझन वाले बोल, उलझाने वाले बोल मत बोलो। किसी में शक्ति पैदा हो, किसी का उमंग उत्साह बढ़ जाए, कोई आगे बढ़े, कोई बाबा से अपना अधिकार ले ले, बोल केवल उतने ही मुख से निकालने चाहिए। इसलिए अगर हम सभी सच्ची साधना करना चाहते हैं तो ये जो साधन दिए हैं बाबा ने, सबसे पहला ये साधन है, इस साधन का सही दिशा में सही ढंग से प्रयोग किया जाए। अगर कोई भी साधन, मान लो आपको दृष्टि वृत्ति की ही चंचलता है, वृत्तियां कईयों की बहुत चंचल होती हैं, वृत्तियां स्थिर नहीं हो पाती, अंदर की वृत्तियां संस्कारों से जो बनी है, उन वृत्तियों को चेंज करने के लिए आपको एक अभ्यास तो है। कौन सा अभ्यास है? व्रत लेने का। बहुत माताओं ने व्रत रखा होगा भक्ति के अंदर, और कई कई निर्जला व्रत रखते हैं, व्रत जल भी नहीं पीते हैं, भोजन तो दूर रहा, और कहते हैं अगर संकल्प आ गया तो भी पाप हो जाएगा। इतना माताएं अपने किसी भी प्रकार की प्राप्ति के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तत्पर हो जाती हैं, व्रत रखती हैं। और बाबा ने तो अपना बना के हम सबको कहा है, बच्ची तुमको कोई भी ऐसा व्रत रखने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन व्रत जरूर रखो। और वो व्रत रखो कि मैं कोई भी बुराई को नहीं देखूंगी, कोई भी नेगेटिविटी को नहीं देखूंगी। व्रत है मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, तुझे ही देखूं, तुझसे ही खाऊं, तुझसे ही बोलूं, तुझसे ही बात करूं, मेरी नजरों में तू बसे, दूसरा कोई ना आ जाए। आपकी वृत्तियां चेंज हो जाएंगी। अगर सच्चा व्रत कोई ने लिया है तो वृत्तियां अपने आप उसकी परिवर्तित होती जाती हैं। लेकिन अगर व्रत नहीं पक्का है, व्रत माना ही प्रतिज्ञा, व्रत माना ही दृढ़ता, और अगर दृढ़ता संकल्प कोई, दृढ़ता संपन्न संकल्प कोई कर ले तो कहा जाता है प्राण जाए पर वचन न जाए, कुछ भी हो जाए क्या बड़ी बात है। अगर आप सब संकल्प ले लो कि मैं अपने मुख को इतना कंट्रोल में रखूंगी, जो चाहूं वही बोलूंगी, बोलना है, ऑर्गन्स मिला है बोलने के लिए, लेकिन जितना जरूरी है उतना बोलूंगी, जो जरूरी है वही सोचूंगी, जितना जरूरी है उतना सोचूंगी, अधिक नहीं। सोच पर कंट्रोल, डोंट थिंक, सोचना ही नहीं। दादी जानकी कहती सोचना ही नहीं है, लेकिन बाबा कहता है भले सोचो लेकिन जो काम का है वही सोचो, जितना जरूरी है उतने सोच संकल्प चलें। तो अगर इसका आपने परहेज रख लिया तो आपका स्वभाव जो है बड़ा सरल और मिलनसार बन जाएगा। जिसका स्वभाव सरल और मिलनसार है वो सहज साधना कर सकता है। अगर थोड़ी सी कोई से आप खिटपिट करके आ जाओ, टकराव ले लो, अनमनी हो जाए, आपकी साधना हो सकेगी? या जब आप बैठेंगे तो वही सामने आएगा। इसलिए कभी भी बाबा कहते हैं कोई को भी अपना शत्रु नहीं बनाना, योगी वो है जिसका कोई भी शत्रु वैरी नहीं, कोई से वैर विरोध नहीं, सब अपने हैं कोई अपना नहीं, सबके साथ प्यार है कोई से विशेष नहीं। जब ये धारणाएं, ये साधन अपनाएंगे तो साधना सहज हो सकेगी। इसलिए साधना का यथार्थ अर्थ क्या है? भक्ति के अंदर बहुत साधनाएं की हैं, बाबा हमको साधना माना हठ नहीं सिखाता। हठ क्रियाएं हमारी नहीं है जो हम एक टांग पर खड़े हो जाएं, वो लोग एक टांग पर खड़े होने की साधना करते हैं, कोई उल्टा टांग टंग जाते हैं, कोई शीर्षासन करते हैं, बहुत हठ क्रियाएं करते हैं, उसको साधना कहते हैं। हम बच्चों को बाबा ने सहज योगी बनाया है, हट क्रियाएं नहीं सिखाई हैं, लेकिन साधना माना निरंतर बाबा के साथ दिल का प्यार, साधना माना सच्चे दिल की तपस्या। एक बाबा दूसरा न कोई, ये तपस्या। तो इसमें पांच मुख्य बातें आपके ध्यान पर मैं देता हूं कि अगर सचमुच आप साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक वृत्ता, दूजा कोई भी वृत्ति के अंदर न रहे। हम भले लौकिक संबंधों में बंधे हुए हैं, आप सबको अपने अपने लौकिक परिवार हैं, सबकी पालना करनी है, सबके साथ तोड़ निभाना है, संबंध निभाने हैं, लेकिन मोह ममता पसना नहीं, दिल का स्नेह सच्चा एक के साथ है, क्योंकि दिल वाला हमने बनाया ही है एक बाबा को। तो सच्चे साधक वो हैं जो दिल से बाबा को मेरा बाबा कहते हैं, ये सच्ची साधना है, जिसमें एक वृत्ता है, दूसरा कोई नहीं, एक नामी, एक का नाम ही चिंतन में चलता है। कोई कितना भी सिद्ध पुरुष हो, कोई कितनी भी प्राप्तियां कराने वाला हो, कई बार हमारी मीठी माताएं अगर कोई अच्छा चमत्कार करने वाला संत आ जाए, साधु आ जाए, कोई सिद्धि प्राप्त कराने वाला, तंत्र मंत्र करने वाला दरवाजे पर आए और आप उसकी महिमा सुन लें, कि उसके पास जाने से, उसकी भभूत लेने से ये बीमारी भाग जाती है, ये ग्रहचारी हट जाती है, तो उसके पीछे पीछे लग जाते हैं, बाबा भूल जाता है। बाबा जो सच्चा सतगुरु है, जो सबका गति सदगति दाता है, उसकी बजाय अल्पज्ञ आत्माओं के पीछे जो कभी थोड़ी सी चमत्कार के रूप में प्राप्तियां करा देती हैं, वो बाबा को भूल करके उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। सदाकाल की प्राप्ति कराने वाला हम सब का बाबा, सबकी गति करने वाला है। संपूर्ण निश्चय रख करके सच्चे दिल का सौदा करो, आपको सब प्राप्तियां बाबा घर बैठे कराएगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चाई बाबा को बहुत पसंद है। अगर ऊपर ऊपर से बाबा कहते हो और अंदर से किसी देहधारी को अपना गुरु मानते हो, अपना बड़ा मानते हो, उससे कुछ प्राप्ति करना चाहते हो, तो बाबा किनारा कर लेता है। इसलिए बहुत पक्का सौदागर है, ध्यान रखना। कभी भी किसी भी व्यक्ति विशेष पर आकर्षित नहीं हो जाना, कोई कितना भी चमत्कारिक हो, बाबा जैसा तो दुनिया के अंदर कोई नहीं मिलेगा, जो सबकी गति सदगति कर दे, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे दे और 21 जन्मों की गारंटी ले, ऐसा बाबा मिला है। फिर भी बार बार किसी भी व्यक्ति विशेष के पास क्यों बुद्धि जाए, क्यों उसका नाम सुमिरन हो? इसलिए एक व्रत्ता के साथ एक नामी और एक नामी के साथ साथ एक का नामी, बोल की भी एक नामी, संकल्पों की भी एक नामी और अपने खर्चे की भी एक नामी। स्थूल में भी इतने फिराक दिल नहीं बनो, जहां आया वहां पर लुटा दिया। जितने कम खर्चे में कार्य हो सकता है उतना कम से कम करके अपने घर को सुव्यवस्थित बनाना, ये माताओं की जवाबदारी है। ऐसा नहीं पैसा आया तो उड़ा दिया गया। कईयों के अंदर दान का संस्कार होता है, रहम के संस्कार होते हैं और जो आ जाता है उसके पीछे जो आया दे दिया उठा करके, और मान लो आपने उसको परख नहीं पाया और उस पैसे से उसने जाकर के पाप कर्म किया, जो आपने उसको रहम के कारण दिया, दान वृत्ति के कारण दिया और उस पैसे का उसने दुरुपयोग किया, शराब पी ली, सिगरेट पी ली, बुरे संग में चला गया, कुकर्म कर लिया, तो आपके ऊपर भी उसका पाप आ जाएगा। इसलिए ऐसे कर्म में हमारा पैसा न खर्च हो। इसलिए बाबा हम सबको कहता है, एक वृत्ता बनो, एक नामी करो और एका नामी से चलना सीखो। कम से कम संकल्प उठें, जो काम होने हैं अपने आप होंगे। प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, अधिक सोचने से कोई काम होते नहीं है, अधिक बोलने से कोई काम नहीं हो जाते। कम संकल्पों से अच्छे काम कर सकते हो, कम खर्चे से अच्छे अच्छे से काम करा सकते हो। और चौथा है एकाग्रता का अभ्यास, मन को बिल्कुल स्थिर करके। अभी यहां अभ्यास कर लेना 3-4 दिन भट्टी के अंदर, बड़ा अच्छा गोल्डन चांस मिला है आप सबको। क्लासेज होंगी, भले होंगी, तपस्या भी होगी, वो भी करें, लेकिन मन एकदम स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए। जैसे जब पानी स्थिर और एकाग्र हो जाता है तो एकाग्रता के बाद उसमें स्वच्छता आती है, जब तक हलचल है तब तक स्वच्छता नहीं रहती, और स्वच्छता नहीं है तो कोई भी चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देती। मैं जो हूं जैसा हूं और मेरा बाबा जो है जैसा है, मैं अपने आप को भी देख सकूं और अपने बाप को भी देख सकूं, और सिर्फ देखूं नहीं लेकिन उसकी शक्तियों को कैच कर सकूं, उसके लिए बहुत एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। मैं कहूंगा कि आप सभी यहां आए हैं भट्टी करने के लिए, खास आए हैं, जितना हो सके मन और बुद्धि को एकाग्र कर लो। साधना के लिए चार चीजों की एकाग्रता जरूरी है। पहली एकाग्रता मन के संकल्पों की है, दूसरी एकाग्रता बुद्धि की स्थिरता है, तीसरी एकाग्रता दिल के भावनाओं की है, भावनाएं भी भटकती हुई ना हो, और चौथी एकाग्रता शरीर की भी है, शरीर भी एकदम स्थिर एकाग्र हो जाए। आपने देखा होगा जो अच्छे योगी होते हैं उनकी बहुत पलकें भी धीरे धीरे खुलती और बंद होती, ऐसे ऐसे नहीं करते, वो भी एकाग्र हो जाती है, शरीर भी एकदम स्थिर हो जाता, हलचल बंद हो जाती है। तो साधना करने आए हैं तो कम से कम इस एकाग्रता को बढ़ा दो, जितनी अच्छी एकाग्रता होगी उतना आपको रस आएगा, साधना का आनंद आएगा और आपको बाबा से बहुत अच्छा मिलन होगा। आप अनुभव करेंगे बाबा मेरे सामने है, वतन में है नहीं, ऊपर है नहीं, लेकिन बाबा मेरे सामने बैठा है और मैं बाबा से बहुत डायरेक्ट मिलन मना रही हूं। तो योग के अंदर, साधना के अंदर जितनी एकाग्रता, स्थिरता, स्वच्छता आती जाएगी उतना आप बाबा के मिलन का सुख ले सकेंगे। और पांचवी बात है एकता, एक मत, कभी भी तकरार नहीं करना। एक मत के लिए एक बहुत सुंदर स्लोगन हमारी दादी जी हमको देती थी, आपने शायद सुना होगा, जब हारमनी का प्रोजेक्ट चला था तो दादी कहती थी हार मानी झगड़ा छूटा। समझा, कोई भी बात अगर आपके अंदर टकराव वाली पैदा हो रही हो, परिवार के अंदर दो मते हो रही हो, घर के अंदर कोई झगड़े चल रहे हो, तो उसमें सॉरी कहने में दादी का एक शब्द बहुत अच्छा था, मीठा शब्द था, बहनों के आगे जब क्लास कराती थी दादी प्रकाशमणि तो कहती थी तुम सारी कर लो, तुम्हारी साड़ी मैली नहीं हो जाएगी। समझ गए माताएं, समझी, सारी कर लो साड़ी मैली नहीं होगी, हार मान लो हारमनी हो जाएगी। तो एक मत के लिए जरूरी है हम सब अपने आप को सारी करना सीख लें, घर के अंदर कभी टकराव पैदा नहीं होगा। तो साधना के लिए अगर ये पांचों बातें याद रखेंगे तो आप बहुत अच्छी साधना कर सकेंगे, सिद्धियां प्राप्त होने लगेंगी, साधन जो है अपने आप आएंगे। साधनों के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है, ये तो मृग तृष्णा के समान है, अगर इनके पीछे भागेंगे तो आप भागते ही रहेंगे, तक जाएंगे, प्राण भी चले जाएंगे, लेकिन अगर आप इनको पीठ कर देंगे तो परछाई की तरह आपके पीछे पीछे आएंगे। इसलिए आवश्यक है कलयुग के अंत के समय बाबा हम सबको कहता है बेहद की वैराग्य वृत्ति, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो आत्माएं तृप्त हैं, इच्छा मात्रम अविद्या हैं, संसार की कौन सी चीज मुझे अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, दो रोटी बाबा खिलाएगा, दो कपड़े पहनाएगा, मुझे कोई शौक नहीं है, मौज नहीं है, कुछ नहीं चाहिए संसार की चीज, ये तो सब विनाशी हैं। साधन तो निमित्त मात्र हैं, आज हैं कल खत्म हो जाएंगे, क्यों विनाशी हैं, हम सब जानते हैं ये सब मिट्टी में मिल जाने हैं, लेकिन फिर भी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। और कौन सा साधन नुकसान कर रहा है, आजकल सबसे बड़ी माया आ गई है सबके हाथ में मोबाइल की। साधन है साइंस का, बहुत अच्छा साधन है, किसी को ढूंढना नहीं पड़ता, किसी के पीछे भटकना नहीं पड़ता, बटन दबाया और बात हो गई, यहां बैठे हैं लंदन और अमेरिका का समाचार मिल गया, कहीं पर कोई संबंधी है उसका हालचाल पूछ लिया, किसी को संदेश देना है एक मिनट में बाबा का मैसेज SMS कर दिया, बहुत अच्छा साधन है सेवा का, लेकिन प्रयोग कैसे हो रहा है, कोई थोड़ी सी तकरार हो गई घर में, कोई एक दूसरे की नहीं बनी, फट से उठाया फोन और कहीं ना कहीं बात फैला दी, किसी से दिल लग गई तो घंटों उस पर बात कर रहे हैं, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। बाबा कहता है ये साधन माया बन गया है, इस साधन का प्रयोग करो, लेकिन बहुत कम से कम, जितना जरूरी है। घंटों बातें करने से कान भी खराब हो जाएंगे, दिमाग भी खराब होगा, पैसा भी जाएगा और बहुत सारे संबंध बिगड़ते जाएंगे, बनेंगे नहीं। इसलिए मोबाइल की माया से बच के रहना, ये कलयुग की अंतिम माया है। ये चक्रव्यूह जैसे होता ना माया का, अर्जुन ही एक चक्रव्यूह को क्रॉस कर सका, ये माया का चक्रव्यूह है, कईयों को फंसा लेता है। और कितने घंटों तक बातें करते रहते आपस में, जाएंगे बिस्तर में और रात को बैठ करके सबको हेलो करेंगे। बाबा से हेलो करने की बजाय, बाबा से गुड नाइट करने की बजाय, देहधारियों को फोन करते हैं और बातें करते रहेंगे करते रहेंगे, इधर उधर के समाचार लेन देन करते रहेंगे। फिर कहेंगे मैं योग करती हूं ना, मेरा योग नहीं लगता। अब जिसकी बुद्धि में व्यर्थ बातें घुसी हुई हैं, उसका योग कैसे लगेगा बताओ, अमृत वेला कैसे अच्छा होगा। इसलिए अगर हमको अमृत वेला अच्छा करना है, सचमुच साधना करनी है, सच्चे दिल की साधना, तो इन साधनों को तलाक दे दो। जितनी जरूरी है उतनी करो, बाबा मना नहीं करता कोई चीज के लिए, लेकिन जितनी आवश्यक बात है उतनी ही करो। तो एक टीवी की माया और दूसरी मोबाइल की, और तीसरी शायद माताएं कम सीखा हो, कोई कोई नए जमाने की पढ़ी लिखी होंगी, इंटरनेट की माया। इतना सुंदर साधन है। अभी अभी दादी ने हमको पत्र लिखाया, बोला यहां यहां भेज दो, पूरे वर्ल्ड में चला गया 5 मिनट के अंदर, टाइप किया और फट से गया इंटरनेट। इतना सुंदर साधन है, लेकिन अगर उसके साइट्स में चले गए और उसको देखने लग गए तो पतन ही पतन है, उन्नति नहीं है। सारे दुनिया का संसार समाचार उसके अंदर भरा हुआ है। इसलिए अगर कोई चलाता है, जानता है, शौक रखता है, तो बाबा की मुरली है, क्लासेज हैं, अच्छी चीजें हैं, भले निकालो, पढ़ो, सुनो, लेकिन अगर आपकी बुद्धि को दूषित करने वाले कोई ऐसे चित्र हैं, ऐसी फेसबुक के अंदर कोई ऐसे दृश्य हैं और उन पर आपका इंटरेस्ट चला गया, तो आपको साधना नहीं करने देगा। ध्यान रखना, यह साधन बड़ा खतरनाक है। इसलिए अगर साधना करनी है तो बाबा कहता है, हे मेरे साधकों, आज के माया के युग में इन साधनों से सावधान रहना, अपने आप को सेफ रखना और बहुत अच्छे इन साधनों को, जो साधन है उनको अच्छी तरह से बैलेंस से रख करके साधना करो, मन को एकाग्र करो, अपने आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, अपनी दृष्टि वृत्ति को शुद्ध और पवित्र बनाओ, अपने अच्छे वाइब्रेशन से विश्व को सकाश दो, ये साधना है। अव्यक्त स्वरूप की साधना करो, व्यक्त में नहीं आओ। तो जब हम अव्यक्त फरिश्ते रूप की साधना करेंगे और इन सब बातों का ध्यान रख करके बैलेंस से चलेंगे, तो बाबा की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी और हमारी जीवन ब्लिसफुल बन जाएगी। ठीक है, तो हमारी माताएं 4-5 दिन ऐसी तपस्या करो जो आपका सचमुच साधना का वायुमंडल पूरे विश्व को परिवर्तन कर दे, सबको शांति दे, शक्ति दे, सकाश दे। ओके, ओम शांति।